ईरानी संस्कृति और कला।
श्रोताओ, साप्ताहिक कार्यक्रम ईरानी संस्कृति और कला की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओ, पिछले कार्यक्रमों में हमने ईरानी वास्तुकला के विभिन्न शैलियों से आपको परिचित कराया था। हमने ये भी बताया था कि ईरान में पारंपरिक बाजार कैसे बनाए जाते थे और समय के साथ साथ उनकी निर्माण शैली में कैसे परिवर्तन हुए। ईरान के प्राचीन बाजारों में से कुछ आज भी मौजूद हैं जिनमें व्यापार होता है, किंतु आधुनिक व्यापारिक सेंटर और दुकानें भी यहाँ पाई जाती हैं। आज के कार्यक्रम में ईरान की पुरानी और महत्वपूर्ण इमारत अर्थात मस्जिद के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे।
मस्जिदें मुसलमानों का उपासना स्थल हैं, जहाँ पर मुसलमानों की मूल उपासना अर्थात नमाज का आयोजन किया जाता है। इनको इस्लाम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस्लाम की शिक्षाओं में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद जैसी इबादतों का उल्लेख किया गया है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार प्रत्येक मुसलमान का दायित्व है कि वो इन बातों को अपनाएं। कहते हैं कि वास्तुकला का दो इस्लामी उपासनाओं से निकट संबंध है, अर्थात नमाज और हज। नमाज के लिए मस्जिद की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में मुसलमान एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त हज भी ऐसी उपासना है जिसका वास्तुकला से संबंध है, क्योंकि इसके लिए मुसलमान पवित्र नगर मक्के में स्थित काबा में एकत्रित होते हैं।
पूरे संसार के मुसलमान नमाज के समय काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम के उदय के आरंभिक काल से ही मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुआ करते थे, जिसे मस्जिद कहा जाने लगा। इस स्थान के महत्व के कारण इसके निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। धीरे धीरे संसार में मस्जिदों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हुई, उसी अनुपात में उसके निर्माण की शैलियों में भी परिवर्तन होता गया। आरंभिक काल में मस्जिदों को बनाने में सादगी की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था।
वास्तविकता यह है कि मस्जिद एक इस्लामी इमारत है। यही कारण है कि इसके क्रियाकलाप हमको इस्लामी संस्कृति और इस्लामी मूल्यों से अवगत करवाते हैं। वे इतिहासकार जिन्होंने मुसलमानों के ऐतिहासिक धरोहरों का उल्लेख किया है, उन्होंने मस्जिदों को इस्लामी संस्कृति का प्रतीक बताया है। मस्जिदों के निर्माण की शैलियों के बारे में बहुत शोध किए गए हैं। मस्जिद ऐसी महत्वपूर्ण इमारत है जिसको बनाने में उच्च स्तर की संरचनाएं प्रयोग की गई हैं। इसका कारण ये था कि मस्जिदों को इसलिए बनाया जाता था कि इनमें लंबे समय तक उपासना की जाए, इसलिए इसकी मजबूती पर ध्यान दिया जाता था। अगर देखा जाए तो पता चलता है कि समय गुजरने के साथ बहुत सी गैर धार्मिक इमारतें गिर गईं या नष्ट हो गईं, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद बहुत सी मस्जिदें अब भी बाकी हैं। अध्ययन से पता चलता है कि पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी हिजरी के बीच बनाई गई कई मस्जिदें शताब्दियों तक बाकी रहीं।
मस्जिद का आरंभिक रूप यह था कि उसे बहुत ही सादा शैली में बनाया जाता था। सामान्यतः आरंभिक मस्जिदों में एक आंगन होता था और कुछ स्थानों पर उस पर छत डाल दी जाती थी। पवित्र नगर मदीना में इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई गई थी, जो बहुत ही सादा थी। संसार की हर मस्जिद का रुख काबे की ओर होता है। यही वो विषय है जो मस्जिद के निर्माण को अन्य इमारतों से अलग करता है। मस्जिद के बनाने में क़िबले की ओर विशेष ध्यान रखा जाता है। जब मस्जिद बनाई जाती है तो सबसे पहले उसमें मेहराब बनाई जाती है जो क़िबले की दिशा को निर्धारित करती है। बाद में क़िबले को आधार बनाकर ही मस्जिद के अन्य भागों का निर्माण किया जाता है। मस्जिद में आने वाले इसी ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। किसी मस्जिद में मेहराब के अतिरिक्त मीनार, गुंबद, हौज, हाल और अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं।
इस्लाम के आरंभिक काल में मुसलमान शुक्रवार के दिन मस्जिद में जमा होते थे और सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते थे, जो साप्ताहिक नमाज होती थी। जुमे की नमाज अन्य नमाजों से अलग होती है और केवल शुक्रवार के दिन दोपहर के समय पढ़ी जाती है। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद का बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि इस नमाज में अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। शायद यही कारण है कि प्राचीन काल से ही वास्तुकारों का ये प्रयास रहा कि वे बड़ी मस्जिदें बनाएं ताकि अधिक से अधिक नमाजी उसमें आ सकें। इसलिए मस्जिद में बड़े हॉल का अस्तित्व सामने आया। बड़े हॉल में अधिक नमाजी छाया में रहकर नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए मस्जिद बनाने में मेहराब के बाद हॉल के बनाने का चलन शुरू हुआ। ईरान में ऐसी बहुत सी मस्जिदें हैं जिनमें एक नहीं बल्कि कई कई हॉल हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर छोटी मस्जिदें भी हैं और बड़ी भी।
ईरानी मामलों के एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ एंड्रे गोडार्ड ने ईरान में चार हालों वाली मस्जिदों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस प्रकार की मस्जिदें सासानी काल की शैली की मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों के कोनों पर ताक बनी होती हैं। खुरासान में ऐसी बहुत सी प्राचीन मस्जिदें हैं जिनके दो हाल होते हैं। उस मस्जिद को जिसमें हौज भी बनाया जाता था हौज कहा जाता था। इसका कारण यह है कि हौज से स्वर्ग की ओर संकेत है, जहाँ पर फल हैं और हौज कौसर है। कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं जिनमें न केवल हौज होता है बल्कि वहाँ पर पतली पतली पानी की नालियाँ बनाई जाती हैं जो पूरी मस्जिद में बहता है। इससे मस्जिद का वातावरण ठंडा रहता है। इस प्रकार की मस्जिदें सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती हैं जिनका पानी भूमिगत जल स्रोतों से जुड़ा होता है।
ईरान में प्राचीन काल से ही उपासना स्थलों के निकट जल का प्रबंध किया जाता था ताकि उपासक पवित्र होकर उपासना स्थल में जा सकें। यही कारण है कि ईरान में बहुत सी मस्जिदों में वुजू खाने बनाए जाते थे। ये वुजू खाने बाद में मस्जिदों का अटूट अंग बन गए। ईरान के बहुत से प्राचीन नगरों में ऐसी मस्जिदें आज भी मौजूद हैं।
ईरान में बनी मस्जिदों की एक अन्य विशेषता यह है कि उन्हें किसी अन्य इमारत से जोड़ा नहीं गया है। मस्जिदें सामान्यतः हर प्रकार की इमारत से अलग होती थीं। मस्जिदों के किनारे सड़कें, बाजार और सार्वजनिक स्थल बनाए जाते थे। दुकानों को मस्जिद से थोड़ी दूरी पर बनाया जाता था। मस्जिद और दुकान में थोड़ी सी दूरी होती थी, अतः प्राचीन काल में ईरान में बनी मस्जिदों में एक विशेष स्थान होता था जहाँ पर मस्जिद में चिराग या दीप जलाने के लिए तेल रखा जाता था। इस स्थान के निकट जिसे साख्तमाने रोगनकशी कहते थे स्नान गृह या हम्माम बनाया जाता था। इसके निकट मस्जिद की रखवाली करने वाले का कमरा होता था। कुछ स्थानों पर मस्जिदों के सामने पत्थर का चबूतरा बना होता था। इस स्थान पर लोग आराम करके हाथ पैर धोकर मस्जिद में जाया करते थे।
मस्जिदों के भीतर न केवल नमाज पढ़ी जाती है बल्कि पढ़ने और पढ़ाने का काम भी होता है। सामान्यतः मस्जिद में पवित्र कुरान की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रवचन भी मस्जिद में ही दिए जाते हैं। कुछ मस्जिदों में पुस्तकालय भी बनाए गए हैं। पुरानी मस्जिदों के निकट धर्मशालाएं भी बनाई जाती थीं और आधुनिक काल में इसके निकट अस्पताल और शिक्षा केंद्र आदि भी बनाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि मुसलमान अपने आध्यात्मिक एवं भौतिक आवश्यकताओं को मस्जिद से हासिल कर सकता है। मस्जिद केवल आध्यात्मिकता का केंद्र न होकर दूसरी गतिविधियों का भी स्थल है।